ہاں جی
بابا رادھا کرشن کی جنم
ہے
رادھا کرشن کی جنم برہما سرسوتی کی
سوریا
کے بیچ آٹھ کے بیچ میں بتا آٹھ کے بیچ میں
برہما کا جنم آٹھ کے بیچ میں ہوتا ہے
سنگم جو لکشمی آ رہا ہے تو ستی لکشمی جو ہے برہما سرسوتی ان کو سورج میں دیتا ہے نا
ہاں جی استھول جنم
استھول جنم دیتا ہے نا مطلب وائبریشن کی پاور سے
ہاں جی
اس سمے آٹھ ہی رہے گا نا اس کا جنم آٹھ کے بیچ میں ہوگا نا اشٹدیو کے بیچ میں
ہاں ہاں پریوار والوں کے بیچ میں ہی پہلے جنم پتا چلتا ہے
مطلب خاص ایک مجھے میں بولا خاص آٹھ آٹھ اشٹدیو کے بیچ میں ہوگا
جو پریوار کے بھاتی ہیں ان کو ہی پہلے بچے کا جنم کا پتا چلتا ہے ہاں جو بھی پریوار کے بھاتی ہوں گے پریوار کے بھاتی تو تھوڑے ہی ہوتے ہیں ساری دنیا تھوڑے ہی ہوتی ہے پورا گاؤں کے لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں اور ہاں تو مرلی میں بولا ہے تو اس کو کراس کیسے کریں گے
مطلب یہ آٹھ کے بیچ کا مانا تو آٹھ اشٹدیو سوریہ وش ہے اور وہاں سے جو وجے مانا سے آٹھ ہونا ہے مطلب ضرور سولہ سکسٹین آتما کے بیچ میں ہونا ہے نا
پہلے نزدیک کا منن چنتن منتھن کرنا ہے یا دور ستیوگ کا کرنا ہے
سب
گیان کی باتیں سنگم میں ہیں یا ستیگ میں ہوں گی
سچی کی گیان بھی سنگم میں
ہوتا ہے ہاں جی جو سنگم میں ہوگا شوٹنگ وہی پھر کہاں ہوگی ستیگ میں بھی ویسا ہی ہوگا اور
باپ سروشکتر ہے مایا بھی سروشکتر ہے جب سروشکتر کی بات آ جائے مایا تھک گئی ہے یہ بات آئی نا مایا تھک گئی ہے اور فیکٹری سے ہاتھ ملا ہے پوسٹ پوسٹ سے آتا ہے لیکن سروشکتر کی بات آ رہا ہے تھکوانے کی ضرورت کیا ہے مطلب کیا ہے باپ کبھی تک نہیں ہوتے کسی باپ سروشکتر ہے ایسا مایا بھی سروشکتر ہے
باپ دو ہیں بےحد کا باپ آتماؤں کا اور بےحد کا باپ منشیوں کا کون تھکتا ہے اور کون نہیں تھکتا ہے جو آتماؤں کا باپ ہے وہ نہیں تھکتا ہے اور جو منشیوں کا باپ ہے وہ تھکتا ہے تو لڑائی کس کے بیچ میں ہے
تھکنے والے کے بیچ میں ہوتی
تھکنے والے کے بیچ میں لڑائی ہے مایا بھی تھکنے والی ہے تو منشی سرشتی کا باپ بھی تھکنے والا ہے پرنتو اس میں
سپریم سول ہے
اس میں سپریم سول تک پرویش ہے سدائیو آتم کی استھتی والا اس لیے انتر پڑ جاتا ہے مایا میں تو پرویش نہیں ہے منشی سرشتی کے باپ میں پرویش ہے تو آخری انت تک طاقت کس کو ملے گی اسی کو طاقت ملتی ہے اس لیے کہا گیا کہ مایا تھک چکی ہے لڑتے لڑتے آخرین تم بچوں کی وجے ہو ہی جاوے گی تو تھکے گی تب وجے ہوگی یا پہلے ہی ہو جاوے گی کوئی کا آخرین پہلے ہوتا ہے کوئی کا آخرین بعد میں ہوگا نمبر وار رزلٹ نکلتے جاتے ہیں
بابا निराकार और साकार मिलकर ही बाबा कहते हैं। निराकार और साकार की मिलकर ही बाबा कहते हैं। कई बार बोला है बाबा जी बाबा के आश्रम से पाप कटे आती है, पाप का पाप सारे पाप जो जो 63 जन्म में जो पाप है वो सब कट जाती है बस को। लेकिन वो शिव बाबा का अक्षत मीठा है, वो तो बोला है बाबा ने
है
शिव बाबा की अक्षत मीठा है, भले शिव बाबा की शब्द जो है अक्षर शिव बाबा वो अक्षत बहुत मीठा है ये भी बोला है। लेकिन कई बार बाबा ने बोलते हैं बाप हिम्मते बच्चे मदद बाप, बाबा नहीं बोला कभी नहीं बोला हिम्मते बच्चे मदद बाप, मदद भी साकार द्वारा ही होना है। मदद जो है
बिंदी थोड़े ही फुदक फुदक के मदद करेगी,
क्या बाबू
बिंदी फुदक फुदक के मदद करेगी क्या कि कोई साकार तन के द्वारा करेगी।
अब तब बाबा कह रहे हैं ना तो बाप कहते हैं हिम्मत बच्चे मदद बाप और मदद भी साकार द्वारा ही होती है। साकार नहीं करता है तो इसलिए बाप ऐसे बोल देना बाप हिम्मत बच्चे मदद बाप और अपने का आत्मा समझकर बाप को याद करो, बाप भी साकार द्वारा ही याद करता है।
अपने को आत्मा समझ है बाबा को याद करो,
बाप को याद करो वो भी कई बार आए होगा,
बाप को याद करो वो मनुष्य सृष्टि का बाप भी है,
मनुष्य सृष्टि का बाप याद
वो भी बाप है।
तो बाबा की मतलब बाप बाप बोला हमें क्या क्या राज है इसमें?
यही राज है कि निराकार भी याद आए और साकार भी याद आए।
बाप में दोनों आते हैं बाबा,
बाप जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो बाप वेद का बाप ही तब है जब उसमें सुप्रीम सोल प्रवेश है, अगर प्रवेश न हो
वो बाप
तो किसी को पता भी न चले कि वो वेद का बाप है। और
मेरा विचार यही है तो इस साकार से मना तो इस सृष्टि में सदा का सचिव बेटा में तो जैसा पता पैया होती है, लेकिन द्वापर में जिस साकार बाप से जिस संबंध में आत्मा इनको जास्त प्यार अनुभव होती है वो उस संबंध में बुलाने के लिए दिल कहती है ना, तो बाप बाप ऐसे ऐसे ही मन कहते ना बाप बाप है हमारा बाप बाप।
तो द्वापर की तो बात ही नहीं, वहाँ तो कोई जानता ही नहीं है,
लेकिन यहाँ तो है ना बाबा,
यहाँ जानते हैं जिनको पहचान दी जाती है वो ही जानते हैं।
तो वो वहाँ रिफ्लेक्ट होता है ना बाबा,
द्वापर युग में तो कोई जानते ही नहीं, पहचान देने वाला है ही नहीं,
लेकिन जास्ती संबंध साकार द्वारा वो संबंध की अनुभूति पाई ना,
वो पाएंगे भी वो ही जिन्होंने संगम युग में प्रैक्टिकल शूटिंग की है, जिन्होंने संगम युग में प्यार की शूटिंग ही नहीं की है प्रैक्टिकल में वो कैसे पावेंगे।
लेकिन फिर ऐसे कह रहे बाप बाप बुलाने में बहुत अनुभव
जो है वो शरीर के साथ होता है या बिना शरीर के अनुभव होता है? हाँ तो साकार शरीर और निराकार बाप तो अनुभव है,
तो बाप बाप बुलाने में तो मना तो नहीं करते हैं ना बाबा,
जब दो बार बाप कहेंगे तो एक निराकार हो गया
एक
साकार हो गया,
बाप बाप दो बार बुलाने बाबा एक बार बुलाना अच्छा लगता है।
हाँ लेकिन बाप जो है वो मीठा शब्द नहीं है, उसके मुकाबले बाबा के मुकाबले बाप मीठा है या बाबा मीठा है?
लेकिन तो हमारे दिल में तो
लेकिन नहीं, ये बाप का जवाब दो,
बाबा ने तो बाबा ने तो
बाबा के मुकाबले बाप शब्द मीठा है या कड़ुआ है?
मुझे तो बाप ही शब्द ही मीठा लग रहा है बाबा।
प्रैक्टिकल प्रूफ भी देते हैं, बाप अपना वर्षा दे या ना दे लेकिन बाबा का वर्षा जरूर मिलता है, तो कौन मीठा हुआ? हैं? बाबा ही मीठा हुआ, इतना मीठा तो और कोई हो ही नहीं सकता। बाप तो लात मार देगा, घर में से बाहर निकाल देगा, फारकती दे देगा, अखबार में निकाल देगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है।
कई बार मुरली अपने बाप की शक्ति आती है,
मुरलियों में तो सब कुछ आता है, बाप भी आता है पाप भी आता है। मुरलियों की बात छोड़ दो, मुरली में जो बात अभी चल रही है कि प्यारा शब्द कौन सा है, क्योंकि जो प्यारा होता है वो जास्ती याद आता है और जो कड़वा होता है वो
नहीं याद
आता, वो याद नहीं आता है। तो बाप शब्द बाबा के मुकाबले कड़वा कहेंगे, मुंह कड़वा हो जाता है जिसे बच्चे को भरसा नहीं मिलता। बच्चा बाप से फारकती लेकर के दूर चला जाता है तो उसका मन कड़वा होगा या मीठा होगा, क्या होगा? कड़वा हो जाएगा। और
हाँ, शुरू श्री बच्चों से माया दखल कराती है तो खुद वो नहीं करती है, लेकिन उनसे माया खराब
है, एक बार भाव नहीं। तो बच्चों से ही नहीं,
सबसे कराती है,
सभी बच्चों से पाप कराती है। वो तो दांव पेच ऐसे मारती है कि जो बच्चे नहीं करना चाहते हैं उनसे भी कराती है।
सूर्यवंशी नहीं करना चाहते हैं,
सूर्यवंशी भी नहीं करना चाहते हैं, चंद्रवंशी करना चाहते हैं क्या? वो भी नहीं करना चाहते। जो चंद्रवंशी हैं, उनमें जास्ती प्योरिटी है या सूर्यवंशियों में जास्ती प्योरिटी है? है चंद्रवंशियों में जास्ती प्योरिटी है। तो जिसमें जो आत्मा पवित्र होती है, वो पवित्र आत्मा तो पाप कर्म करना ही नहीं चाहती, तो भी माया उनसे कराती है।
मतलब सूर्यवंशी चाहते हैं क्या?
है
सूर्यवंशी चाहते हैं क्या?
सूर्यवंशी
चाहते हैं चंद्रवंशी उठाते नहीं, माफ करने
की चाहते। सूर्यवंशियों की तो आदत पड़ी हुई है जन्म जन्मांतर की, रुद्रमाला के मणके हैं, जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, विकारी बनने की आदत है, इसलिए वो आदत मजबूर कर देती है पाप कर्म करने के लिए। माया तो बाद में मजबूर करती है, इसलिए कहते हैं जन्म जन्म को पापी। और
गांधी माना इससे गंदा
है,
माना काम के आधार पर नाम बनते
हैं,
जो एक बेहद की दुनिया में माना
ब्राह्मण की दुनिया में गांधी
जो ब्रह्मात्मा है,
इससे
कौन सी गंध निकम है?
बाप को नहीं जानते, सबसे बड़ी गंध तो ये है। तुम बच्चों में विशेषता क्या है?
बाप को पहचान,
तुम बाप को पहचानते हो और वो
नहीं पहचानते,
वो बाप को नहीं जानते तो थोड़ी गंध है क्या? ये सबसे बड़ा गुण है तुम बच्चों का, सबसे बड़ा खुशबू है तुम बच्चों की कि तुम बाप को जानते हो और वो
नहीं
जानते। वो दूसरे धर्म वाले जो है वो बाप को नहीं जानते।
लेकिन बाबू एक तरफ गुणों की गंध है ना उसमें,
बाप
की गंध है ना, मतलब धारणा वाला है ब्रह्मा वाली आपका तो धारणा वाली है, गंध है धारणा।
सहन शक्ति की जो धारणा है ब्रह्मा में, जिस धारणा से स्थापना होती है नई दुनिया की, नई दुनिया का संगठन बनता है, वो धारणा पिछले 63 जन्मों में क्यों नहीं करके दिखा दी? उस आत्मा में सहन शक्ति की धारणा है, क्योंकि चंद्रवंशी आत्मा है, स्वयं चंद्रमा है तो पूर्व जन्मों में भी वो धारणा दिखाई पड़नी चाहिए, क्यों नहीं दिखा दी?
सुप्रीम सारे बात लगे।
हाँ जी, बच्चे अपने ऊपर ले लेते हैं। शिवो हम कह के बैठ जाते हैं, मैं ही शिव हूँ, स्थापना करने वाला, पालना करने वाला, विनाश करने वाला।
वो एक कर्म वो है ना कश्यप हो गए ना बाबा, वो ब्रह्मा कश्यप हो गए हैं।
कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। हाँ जी,
जगदम्बा सरस्वती है, ज्ञान की देवी है, ज्ञान में उनको कोई खास नहीं कर सकते। ज्ञान में जगदम्बा सरस्वती है,
वाचा के आधार पर ज्ञान में जगदम्बा को कोई क्रास नहीं कर सकता,
तो इसलिए उनको ज्ञान देवी, ज्ञान की देवी का महिमा है। मन का
नाम है जगदम्बा सरस्वती।
और जो वो तो ज्ञान में कहने में वो टीका है जगदम्बा सरस्वती, और याद में सबसे बड़ी टीक है, मतलब बाप के बाद जो दूसरे नंबर है अष्टदेव के काशी, जिसमें याद की तेज ज्यादा है, इसको बाबा ने योग ने कहा है ना।
हाँ जी,
तो ये जगदम्बा सरस्वती ज्ञान में टीका है, वो काशी माना जो अनुसुईया जिसको बाबा ने बैठ दिया है वो याद में ठीक है।
याद माने क्या होता है?
याद माने बाप की याद है बाबा।
याद माने प्यार, जहाँ ज्यादा प्यार होता है वो ऑटोमेटिक याद आता है, निरंतर याद आता है, न चाहने पर भी जो प्यारा होता है वो याद आता है। तो याद माने प्यार,
तो याद में वो ठीक है, याद में ये ठीक
है। हाँ जी, ज्यादा ताकतवर माल कौन सा है?
तो याद के है बाबा, सूर्य वंशी जो है असदेव, सूर्य वंशी जो असदेव
है, याद ही ज्यादा पावरफुल है। याद के बल पर विश्व की बात सही ली जा सकती है, कहा भी जाता है काशी विश्वनाथ गंगे, जब काशी का नाम आएगा तो साथ में विश्वनाथ का भी नाम आएगा, ये याद की शक्ति से ही जुड़े हुए हैं। ज्ञान को पावर नहीं कहा जाता है, ज्ञान बल है, लेकिन वो बल नहीं है जो याद में है।
ज्ञान तो सोचा है,
और
शक्ति कला तेरे हमारे सर्व का बना है, ये बात आती
है।
मगर कला की जब कला की बात आती है वो चंद्रमा की लागू होती है, दूरी पर नहीं लागू होती।
शक्ति कला तेरे बहाने सर्व का भला, तो चंद्रमा जो है वो तो कृष्ण की आत्मा है, कृष्ण की आत्मा को सोलह कला संपूर्ण से मिसाल दी जाती है। हे कृष्ण नारायण वासुदेव, जो नारायण है वो ही कृष्ण है, वो ही वसुदेव का पुत्र है। तो चढ़ती कला माना किसके लिए, खास किसके लिए लागू होता है?
शक्ति कला मतलब जो ब्रह्मा की आत्मा जिसके प्रवेश,
ब्रह्मा के लिए लागू होता है।
लेकिन वो तो 2018 की बात है ना बाबा, जब
अभी भी तो चढ़ती कला ही कहेंगे, पहाड़ पे जब चढ़ते हैं तो चढ़ते चढ़ते कभी कभी जोर से तूफान आता है, तो कहीं शरण लेते हैं किसी गुफा की या किसी शिला की, तो उसे उतरना थोड़ा ही कहेंगे। लगातार चढ़ती कला है, उसकी चढ़ती कला से ही हम ब्राह्मणों का भला हो रहा है।
परंतु लगातार चढ़ती कला 2018 से शुरू होती है।
2018 16 कला संपूर्ण बन जाएगा।
संपूर्ण बन जाएगा।
हाँ जी।
मतलब जब उनको रेवेलेशन आता है तो गीता के भगवान शिवशंकर भोलेनाथ नहीं नहीं है।
हाँ जी, तभी चढ़ती कला संपूर्ण है।
बाबा, संगम की आयु ज्यादा से ज्यादा 100 साल हो गया।
हाँ जी,
100 साल। लेकिन राजकाल स्थापन होने में 50-60 वर्ष लगती है।
हाँ।
तो असली पढ़ाई शुरू हुआ 76 जब बाप की प्रति
है,
जबकि असली पढ़ाई जो है,
हाँ।
असली पढ़ाई 76 से शुरू हुआ
जब, हाँ।
बाप का मृत्यु होता,
हाँ।
उससे 50 साल याद करने से 2036 साल
है,
2036
साल ऐड करने से
50 साल पढ़ाई का, 50 साल।
हाँ।
तो राजधानी स्थापन होने में 50-60 मतलब 50-60 ईयर्स लगता है।
हाँ।
तो 50 साल मतलब 2036 तक पढ़ाई जरूर होता है ना बाबा।
हाँ।
तो उसके बाद लड़ाई होता है, पढ़ाई लड़ाई और फिर आ जाए मेरे बाबा।
हाँ।
पढ़ाई लड़ाई आ जाए, ये है ना काम क्रम है ना।
25 से लेकर के वो 76 से लेकर के 18 तक कितने साल हुए? 16-17-18 तक
40 हो गए।
40, तो 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। किन के लिए? नहीं, ब्रह्मा तो 16-18 के बीच में ही बन जाता। बुद्धि में बैठ गया है गीता का भगवान कौन, तो एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु हो गया। बाकी और जो आत्माएं हैं, जो माला में आने वाली हैं, राजयोग की पढ़ाई पढ़ रही हैं, जो भी हो, विजय माला में हो, रुद्रमाला में हो, राज परिवार में हो, उन सब की पढ़ाई चल रही है। ऐसे नहीं रुद्रमाला वालों की ही पढ़ाई चल रही है, रुद्रमाला की भी पढ़ाई है तो विजयमाला की भी पढ़ाई है। जो भी 16108 की लिस्ट में आने वाले हैं, उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 10 साल का टाइम है, 50 तक। अब राजाएं जब सतो प्रधान बन जाए तो नंबर किसका लगे?
राजाएं तो उसके बाद तो
प्रजा का नंबर लगे। तो जो अगले 10 साल रह जाते हैं उसमें प्रजा वर्ग की जो भी आत्माएं हैं, 9 लाख, 4.5 लाख, उनको भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम चाहिए। क्योंकि पहले जन्म की जो प्रजा होती है उसकी भी कोई खास खसूसियत है। क्या खसूसियत है? जो और धर्मों में और जन्मों की प्रजा में नहीं होती है। नहीं, हाँ वो तो है ही, वो खसूसियत है यथा राजा तथा प्रजा। राजा विश्व का मालिक है तो प्रजा भी अपने को क्या समझेगी? राजा नहीं, विश्व का मालिक समझेगी। जैसे परिवार में बाप होता है, बच्चा भी होता है। बाप कहेगा इस कारखाने का, इस दुकान का मालिक मैं हूँ, तो बच्चा भी क्या कहेगा? उसकी बुद्धि में से ये बात निकाली जा सकती है कि तू मालिक नहीं है? निकल सकती है? नहीं निकल सकती। दूसरे लोग भी क्या समझते हैं, मालिक है या नहीं है? सबकी बुद्धि में बैठता है कि ये मालिक है। ऐसा प्यार बाप का बच्चे के प्रति होता है, जैसा पहले जन्म का प्यार है प्रजा के प्रति राजा का, वो प्यार अंतिम जन्म में आज देखने में नहीं आता है। राजाओं का जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो अपनी जेबें भर रहे हैं और प्रजा गरीब से गरीब बनती जा रही है, वो साहूकार बनते जा रहे हैं। तो नहीं कहेंगे यथा राजा तथा प्रजा।
तो कहेंगे इसके की उद्धार होने से बाद ही पहले रुद्र माला की और विजय माला की उद्धार होगी।
साढ़े चार लाख में सारा विश्व समाया हुआ है, बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। वो 9 लाख बीज हैं, और
द्वापर में द्वापर से गैस की सी गैस की लगता दो जन्म पुरुष का यानी शरीर का दो जन्म मिलता है और उसके बाद 14 बदल के रहना है। मतलब दो जन्म पुरुष यानी दो जन्म स्त्री रहना मना, तो अंतिम समय में जो पुरुष स्त्री की 14 को याद करती है, ऐसी स्त्री भी पुरुष का 14 को याद करती है, तब जरूर शरीर बदलेंगे ना बाबा। तो दो जन्म कैसा होगा से
द्वापर युग से हर जन्म में ऐसा ही होता है। द्वापर से क्यों? सतयुग के आदि से ही ऐसा होता है कि स्त्री पुरुष को याद करती है तो पुरुष जन्म मिलता, पुरुष स्त्री को याद करता है तो स्त्री जन्म मिलता। द्वापर युग से द्वैत आ जाता है, द्वैत आने के कारण ये अंतर पड़ जाता है कि बहुत सी आत्माओं को दो जन्म स्त्री या दो जन्म पुरुष के मिल सकते हैं।
वो तो कह रहा था क्योंकि अंतिम की याद जो है ना, अंतिम याद जो होती है उसके अनुसार ही चौला मिलता
है। अंतिम तो संगम युग है, संगम युग में जैसी जैसी शूटिंग की है, जैसे जैसे संकल्पों का सृष्टि बनाई है वैसा ही होगा।
इसी का मतलब मेरा मतलब यही है बाबा, शरीर छोड़ने के द्वापर से शरीर छोड़ने के समय में जो सहज पुरुष स्त्री को याद करते हैं, स्त्री पुरुष को याद करते हैं, तब दो जन्म मिलने की क्या
संभावना? यही है कि संगम युग में कोई कोई आत्माओं ने ऐसा संकल्प चलाया है कि हमें तो स्त्री चोला ही चाहिए, ये दुर्योधन दुशासन नहीं चाहिए।
बीज यहाँ पड़ता है
तो बीज पड़ जाता है, संगम में ही संकल्पों का बीज पड़ता है। हम अपनी अपनी सृष्टि अपने आप बनाए रहे हैं। सबसे जास्ती स्त्री चोले कौन लेगी आत्मा? लक्ष्मी, लक्ष्मी को प्योरिटी प्यारी है, तो ज्यादा प्योरिटी प्यारी होने के कारण वो कौन से जन्म ज्यादा लेना चाहेगी? स्त्री चोला ज्यादा लेना चाहेगी। हाँ जी,
नारायण वाली आत्मा भी मतलब लेडीज बनती है? नारायण वाली आत्मा भी लेडीज का जन्म लेती है?
हाँ। तो
ऐसी
नारायण वाली आत्मा लेडीज का जन्म ही नहीं लेगी?
आप आपने बोला ना एक जन्म स्त्री एक,
हाँ एक जन्म स्त्री एक जन्म पुरुष, ये क्रम तो चलता है सतयुग त्रेता में। और द्वापर युग में द्वैतवाद शुरू होने से कोई कोई आत्माओं के दो दो जन्म लगातार भी होते हैं।
बाबा लेकिन वो तो सारे संसार का बाप है, उसको तो नहीं लेना चाहिए।
क्यों सारे संसार का बाप है? क्या खाता पीता नहीं है कि सोता नहीं है? है सारे संसार की जो गति है जो चाल है वो उस बीज के अंदर समाई हुई है या नहीं है? है अरे भगवान नीचे वाला है या भगवान ऊपर वाला है?
लेकिन भगवान का बच्चा तो भगवान ही होता है।
ये क्या बात हुई? भगवान का बच्चा भगवान होता है, फिर उसका बच्चा भगवान होता है, फिर उसका बच्चा भगवान होता है, फिर तो 84 जन्म भगवान ही भगवान होते रहेंगे। भगवान एक होता है या दो होते हैं या अनेक होते हैं? भगवान तो एक ही होगा। और
सृष्टि को जो संभालने के लिए वो कार्य करते हैं।
हाँ जी बाबा।
हाँ
जो सूर्यवंशी ने जो 12 अष्टदेव और नष्टदेव जो 4
हाँ
उसको मना क्रम में सनातन देवी देवता धर्म की बीज है बाप और इस्लाम धर्म की बीज है और नष्टों में एक
है
और उसके अंदर जो बौद्ध धर्म की तो लक्षण हो गया और उसके अंदर तो असमृद्ध हो गया।
हाँ जी
वो उसके बाद इस्लाम की ही 12 ग्रुप होते हैं ना बाबा।
हाँ
इस्लाम की बीज वो बीज में
ये बीज है सूर्यवंशी टोटल अष्टदेव में से और वो बीज है वो टोटल इस्लामी है।
मतलब उसको सूक्ष्म बीज कह सकते हैं?
नहीं सूक्ष्म बीज तो ऊपर से ही आता है। ऊपर से आने वाले धर्म पिता हैं वो सूक्ष्म बीज तो हैं लेकिन उनका भी बीज डालने वाला कोई है साकार सृष्टि में।
वो
हाँ जी
जैसे सिद्धार्थ शुद्धोदन और बिंदुसार।
हाँ जी
माना शुद्धोदन जो आत्मा है माना सूर्यवंशी में जो नक्षत्र में आते हैं
ना
वो होता है
ना? नहीं सूर्यवंश कहाँ हुए? सूर्यवंश तो 8 हैं।
8 अंश लेकिन 12 ग्रुप है ना तो
12 हैं लेकिन 12 में भी 4 तो नष्ट देव हैं।
लेकिन वो भी सूर्यवंश में आते हैं?
वो भी सूर्यवंश में हैं लेकिन भिन्न हैं। वो देव नहीं है वो दानव है। हाँ जी
एक गुरु जी ने कहा है
हाँ
जितना जितना हम याद करेंगे उतना उतना हम पावन बनेंगे।
मतलब
जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना उतना पावन बनेंगे
पावन बनेंगे
पावन बनेंगे। मतलब कई बार बोलते हैं लेकिन खास ये बोला है योग की स्नान समझना है लेकिन ज्ञान की स्नान नहीं समझना है।
योग का स्नान समझना है
ये बात है बाबा 3 दिन के पहले ये कह सकते हैं
जो भी कैसे कहे जो भी मुरली है जो भी बाबा की वाणी है 2 बातें नहीं बोलती है। 1 बात बोलेगी या 2 बातें बोलेगी?
एक ही बात लेकिन
तो मुरली में बोला है ज्ञान को जल
बाबा
स्नान जल से किया जाता है या भोजन से किया जाता है?
भोजन से नहीं किया
भोजन से ताकत मिलती है
लेकिन
जल से भोजन पचाया जाता है।
लेकिन बाबा तो ये बीसीडी का नंबर 1262 है।
वो जो गलतियां हुई हैं वो मनुष्यों से छापने की गलतियां हो सकती है, उनके मति भ्रम की गलतियां हो सकती है, लेकिन जहां 20 बार एक ही बात बाबा ने बोली है वो मानेंगे, या एक आध बार उल्टी बात आ गई वो पकड़ लेंगे। योग है खाना भोजन, भोजन से शक्ति मिलती है और उसको पचाने का साधन है जल। ये ज्ञान जल जो है भोजन को पचाने का साधन है, नहीं तो गर्मी चढ़ जाएगी पानी नहीं पिएंगे तो। जैसे विदेशियों को गर्मी चढ़ जाती है और हाँ जी
तो दक्षिण भारत की जो भाषा है, दक्षिण भारत की जो भाषा है उनको विदेशी भाषा कहते हैं, जबकि बाप की भाषा है हिंदी, बाप की भाषा है तो हिंदी है ना। तो दक्षिण भारत में जो भाषा,
अच्छा पंजाबी को विदेशी भाषा कहेंगे या स्वदेशी भाषा कहेंगे?
पंजाबी वो तो भी विदेश होते हैं बाबा, बिना हिंदी सब विदेश की भाषा होते हैं।
पंजाबी स्वदेशी है या विदेशी है?
ज्ञान की दृष्टि तो पंजाबी लोग स्वदेशी होते हैं, पंजाबी मतलब स्वदेशी है ना, मतलब वो सिख लोग है जो हिसाब से वो स्वदेशी इसमें हिंदी बोलते
हैं। ऐसे ही नेपाली स्वदेशी है या विदेशी है?
नेपाली
याद नहीं, नेपाली याद ही नहीं,
नेपाली की भाषा मुझे पता नहीं
है, नेपाल देश ही पता नहीं है,
देश पता है लेकिन उसका भाषा की तो समझ में नहीं है।
उनकी भाषा अलग है, उनकी भाषा नेपाली अलग है, हिंदी नहीं है, लेकिन वो नेपाल भी भारत के अंदर था या नहीं था?
भारत के
हाँ, तो भाषा के आधार पर नहीं कहा जा सकता कि ये स्वदेशी है या विदेशी है। जो स्वभाव संस्कार भरे हुए हैं उनके आधार पर कहा जाता है स्वदेशी या विदेशी, और वो स्वभाव संस्कार माता पिता के खून से आते हैं ज्यादातर, माँ बाप के वंशानुगत हैं, जैसे परिवार में पलता है जैसे वंश में पलता है वो स्वभाव संस्कार बन जाते हैं। एक विदेशी भी, विदेशी भाषा जानने वाला भी स्वदेशी लोगों के मुकाबले अच्छी हिंदी बोल के दिखाता है। स्वदेशी लोग संस्कृत नहीं जानते हैं और वो संस्कृत में पारंगत होकर के दिखाता है विदेशी भाषा जानने वाला। इसे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि आत्मा स्वदेशी या विदेशी नहीं होती है। क्या कोई भी आत्मा स्वदेशी नहीं है, कोई भी आत्मा विदेशी नहीं है, क्योंकि आत्मा ने पता नहीं, जिसको आज हम विदेशी कहते हैं दक्षिण भारत का कहते हैं, पता नहीं पूर्व जन्म सारे उन्होंने उत्तर भारत में लिए हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। और
बाबा और आदित्य वाणी मुरली को मैं घटी नहीं कर
है? हाँ बोलो
मुरली को
हाँ
पोइट्री कहा
है? पोइट्री
पोइट्री
हाँ जी
और आदित्य वाणी जो ब्रह्म रूप से आती है तो उसको क्रॉस
करना
ना ऐसी काट कर हमारा क्रैश करने में क्या उसको क्या कोई मतलब नहीं बना
ज्यादा गोहियार्थ पोएट्री में होता है या प्रोज में होता है बस बाबा की वाणी साधारण सुनने में ऐसे लगती है कि जैसे साधारण बात है लेकिन जब उसके एक एक शब्द का हिज्जे हिज्जे किया जाता है तो बात में से बात निकलती है बाल में से खाल निकलने लगता है सारी दुनिया के रहस्य बाबा की वाणी से क्लियर होने लगते हैं ऐसी कविता है वो ही कविता तुलसीदास की सूरदास की प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ाई जाती है बेसिक में और वो ही कविता बीएएमए में भी पढ़ाई जाती है क्या अंतर हो जाता है रहस्य का अंतर हो गया बच्चा बुद्धि रहस्य को नहीं समझता जो सगीर बुद्धि बन जाते हैं वो उसकी गहराई को समझने लग पड़ते हैं तो पोएट्री जो बाबा की मुरली है उसमें गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम भरा हुआ है अव्यक्त वाणी में उतना ज्ञान नहीं भरा हुआ है और ओम शांति है लंबा चौड़ा है छोटा सा प्रश्न हो इस एडवांस ज्ञान में आए लोग शरीर नहीं छोड़ेंगे लेकिन एक भाई ने शरीर छोड़ दिया उसके परिवार वाले कह रहे हैं ऐसे कैसे हो गया परिवार वाले भी ज्ञान ले रहे हैं हाँ परिवार वाले ज्ञान ले रहे हैं
वो परिवार नहीं ज्ञान में परिवार
है
बाबा का परिवार
बाबा के परिवार वाले जो कह रहे हैं उन्होंने ये बात नहीं पढ़ी बाबा की कि अगर भक्ति के संस्कार रह जावेंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा अभी ही नहीं अंत तक भी ये ज्ञान चलेगा ये नियम अंत तक भी चलेगा अगर भक्ति के संस्कार रहे हुए हैं तो कोई भी एडवांस में चलने वाला अपने को बताने वाला हो उसको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा एक पॉइंट याद रहता है और दूसरा पॉइंट भूल जाता है जो परिवार वाले हैं जिनको हम परिवार वाला कहते हैं ब्राह्मण परिवार वो पक्के 100% परिवार के हैं या 9 भागों में ब्राह्मण बटे हुए हैं शास्त्रों में भी ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई हुई हैं जैसे 9 धर्म विशेष हैं उन नौ धर्मों का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में ब्राह्मण जीवन में। तो यहाँ नौ प्रकार के ब्राह्मण हैं। कोई ऊंचते ऊंचे हैं और कोई नीचते नीचे हैं। जो ऊंचते ऊंचे हैं उनकी सिर्फ दो ही कैटेगरी है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। फिर उन दो कैटेगरीज में भी जो दूसरे नंबर की कैटेगरी है चंद्रवंशियों की, उसमें भक्ति भरी हुई है कि नहीं भरी हुई है? उनमें भी भक्ति भरी हुई है। जो ऊंचते ऊंचे कैटेगरी के कहे जाते हैं देवता बनने वाले, वो भी शरीर छोड़ गए, उनका मुखिया भी शरीर छोड़ गया, उनके फॉलोअर्स भी शरीर छोड़ते जा रहे हैं। तो बाकी जो बचे और आठ कुरियों के या सात कुरियों के, तो उनका क्या हाल होगा? वो तो जरूर शरीर छोड़ेंगे। हाँ,
मतलब कौन से जो सिर्फ आत्मा को याद करते रहे
हैं,
जो आत्मिक स्थिति में रहे वो नहीं छोड़ सकेंगे शरीर?
यहाँ आत्मिक स्थिति की तो बात ही नहीं की अभी, यहाँ बात की खास
भक्ति और ऐसे बताए ना,
भक्ति के संस्कार जिनके अंदर रहेंगे।
भक्ति के संस्कार मतलब?
भक्ति के संस्कार माने कहना कुछ और करना कुछ और, वो स्पष्ट दिखाई दे जाए दूसरों को।
दो दो बातें जैसे,
तो ये भक्ति के संस्कार हैं। भगत जो होते हैं उनकी बुद्धि भागती रहती है, एक ठिकाने पक्की नहीं लगती।
जैसे एक शिव बाबा ही नहीं बोले,
उनको भगत कहते हैं। आधा ज्ञान में चलेंगे आधा नहीं चलेंगे, दो बातें मुरली की मानेंगे दो बातें नहीं मानेंगे, सारी बातों को फॉलो नहीं करेंगे। कच्चे ब्राह्मण कह दो,
मतलब मुरली के अनुसार जो चले बाबा वो है? जो मुरली के एक एक वर्ड के अनुसार चले तो
कौन है, नाम बताओ।
नहीं मैं मतलब एक
बात आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ तो बताओ ना, वो कौन है जो मुरली के एक एक शब्द के अनुसार चलने वाला है?
नहीं आप बताओ, वो चले तो वो शरीर नहीं छोड़ेगा।
अरे वो 4.5 लाख निकलेंगे अंत में,
जो मुरली के अनुसार चलेंगे
चलेंगे, वो शरीर नहीं छोड़ेंगे। बाकी 9 लाख में थे 4.5 लाख को भी शरीर छोड़ना पड़ता है। बाकी दुनिया को तो शरीर छोड़ना ही छोड़ना है। ओम शांति।